लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 14 जून को ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त के महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो। Nel Vangelo di questa domenica risuona l'invito di Gesù che rivolge ai suoi discepoli a non avere paura.
Atti pie bhaiyo em behno su prabhat. Is ravivar ke susamachar paath mein Yesu ka apne shishyon ke liye nimantran ki dhwani goonjta hai ki ve nahi dare, majboot rahein aur jeevan ki chunautiyon ke samne dridh bane rahein, जो उन्हें उन प्रतिकूलताओं का पूर्वाभास कराती है जो उनका इंतजार कर रही हैं। आज का पाठ मिशनरी प्रवचन का हिस्सा है जिसमें गुरुवर ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए प्रथम अनुभव हेतु प्रेरितों को तैयार करते हैं। यीशु लगातार उनसे कहते हैं कि वे नहीं डरें, भयभीत ना हों, और इसके साथ ही यीशु उन्हें तीन ठोस परिस्थितियों के बारे बतलाते हैं जिसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है शत्रु जो ईश्वर के वचन को कलंकित करना चाहते हैं और इसका प्रचार करने वालों को चुप कराकर इससे दबाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यीशु मुक्ति के संदेश जिसको उन्हें सौंपा गया है अपने शिष्यों को फैलाने का प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अब तक उन्होंने इसका प्रचार सावधानी से छिपे हुए रूप में अपने शिष्यों के छोटे दल में किया था, किंतु शिष्यों को उनके सुसमाचार को प्रकाश में लाना होगा, खुले में आकर सार्वजनिक रूप से उसका प्रचार करना होगा।
La seconda difficoltà che i missionari di Cristo incontreranno è la minaccia fisica contro di loro, cioè la persecuzione diretta contro le loro persone fino all'uccisione.
दूसरी कठिनाई जिसका सामना ख्रिस्त के मिशनरियों को करना होगा वह है शारीरिक चेतावनी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अत्याचार सहना पड़ेगा, उन्हें मार डाला जाएगा। संत पापा ने कहा कि यीशु की भविष्यवाणी हर युग में पूरी हुई है। यह एक दुखद सच्चाई है, किंतु यह विश्वासों को साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करता है। कितने ख्रिस्ते आज भी विश्व भर में अत्याचार सह रहे हैं, वे सुसमाचार के लिए सहर्ष दुख झेल रहे हैं। वे हमारे समय के शहीद हैं और हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि उनकी संख्या आरंभिक कलीसिया से कहीं अधिक है। बहुत अधिक लोग सिर्फ ख्रिस्ते होने के नाम पर शहीद हो रहे हैं। ये उन शिष्यों को सलाह देते हैं जो अतीत में और आज भी अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। उनसे डरने की जरूरत नहीं है जो घमंड और हिंसा से सुसमाचार प्रचार की शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। निश्चय ही वे आत्मा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर के साथ संबंध को नहीं बिगाड़ सकते। इससे शिष्यों से कोई नहीं छीन सकता क्योंकि यह ईश्वर का उपहार है। शिष्यों के लिए एक ही डर है कि इस ईश्वरीय वरदान को खो देना, ईश्वर के साथ सामीप्य एवं मित्रता को खो देना, सुसमाचार के अनुसार जीना बंद कर देना। इस तरह यह एक नैतिक मृत्यु का अनुभव है जो पाप का प्रभाव है। तीसरी परीक्षा जिसकी ओर यीशु इशारा करते हैं कि उसका सामना शिष्यों को करना पड़ेगा वह है ईश्वर द्वारा त्याग महसूस करना। यहाँ भी यीशु कहते हैं, डरो मत, क्योंकि इन चीजों एवं अन्य प्रकार के नुकसान का अनुभव करने के बावजूद शिष्यों का जीवन ईश्वर के हाथों में सुदृढ़ है, जो हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं।
Sono come le tre tentazioni, edulcorare il Vangelo, annacquarlo, seconda la persecuzione e terza la sensazione che Dio ci ha lasciato da soli.
इस प्रकार तीन प्रलोभन हैं, सुसमाचार को कलंकित करना, अत्याचार और ईश्वर द्वारा त्यागा महसूस करना। यीशु ने भी जैतून पहाड़ और क्रूस पर इसे सहा। यीशु ने पुकार कर कहा, पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? जब कोई आध्यात्मिक अनुर्वरकता महसूस करे तब उन्हें नहीं डरना चाहिए। पिता हमारी देखभाल करते हैं क्योंकि हम उनकी नजरों में मूल्यवान हैं। महत्वपूर्ण बात है विश्वास का साक्ष्य देने के लिए खुलापन और साहसी होना, दूसरों के सामने यीशु को स्वीकार करना और अच्छा काम करते रहना। माता मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा कि अति निष्कलंक कुंवारी मरियम प्रतिकूलता और खतरे की घड़ी में ईश्वर में विश्वास और त्यागे जाने का अनुभव करने की आदर्श हमें सहायता दे कि हम कभी निराशा के सामने हार ना माने, बल्कि हमेशा उन पर और उनकी कृपा पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर की कृपा बुराई से हमेशा अधिक ताकतवर होती है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत सूचनाएं देते हुए संत पापा ने कहा, कल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। कोरोना वायरस संकट ने शरणार्थियों की सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संत पापा ने उनके लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
Vi invito a unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti.
मैं हम सभी की ओर से नवीकृत एवं प्रभावशाली प्रतिबद्धता हेतु प्रार्थना में सहभागी होने का निमंत्रण देता हूँ, ताकि सभी मानव प्राणी की रक्षा की जा सके, खासकर जो अपने अथवा अपने परिवार पर गंभीर खतरों के कारण भागने के लिए मजबूर हैं। संत पापा ने कहा कि दूसरा पहलू जिस पर महामारी ने हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है वह है मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। लॉकडाउन ने प्रदूषण को कम कर दिया है और कई स्थलों के सुंदरता को फिर से निखार दिया है। कई जगह ट्रैफिक और शोर से मुक्त हो गए हैं। अब गतिविधियों की पुनः शुरुआत करते हुए हमें आम घर की देखभाल पर अधिक जिम्मेदार होना होगा। संत पापा ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं विश्व भर में उन सभी जमीनी स्तर पर हो रहे प्रयासों की सराहना करता हूँ। उदाहरण के लिए रोम में आज तैबर नदी के लिए एक प्रयास जारी किया गया। संत पापा ने उन स्थलों की भी याद की जहाँ इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः उन्होंने कहा कि एक ऐसी नागरिकता को बढ़ावा दिया जाए जो सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो। 21 जून को पिता दिवस मनाया जाता है। संत पापा ने इसकी याद दिलाई और सभी पिताओं के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि पिता होना कोई मामूली बात नहीं है, अतः हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम उन पिताओं की भी विशेष याद करते हैं जो स्वर्ग से हमारी रक्षा करते हैं। तब संत पापा ने रोम, इटली और विश्व के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने युवाओं का अभिवादन किया। संत अलोयसियस गोंजागा की याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे ईश्वर एवं पड़ोसी के प्रेम से पूर्ण थे। उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में रोम में हो गई थी। संत पापा ने विश्व के सभी युवाओं को उनकी मध्यस्थता को समर्पित किया और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Make कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 21 जून को कैथोलिक कलीसिया कैथोलिक पंचांग के अनुसार संत अलोसियस गोंजागा का त्योहार मनाती है। संत अलोसियस गोंजागा युवाओं के संरक्षक संत हैं। वे यीशु समाज धर्म बंधु के रूप में रोम आए और प्लेग महामारी के दौरान बीमारों की सेवा करते खुद भी प्लेग के शिकार हो गए। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को संत अलोसियस के पर्व दिवस पर ट्वीट कर युवाओं को अपने रक्षक संत से नए हृदय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, प्यारे नौजवानों, आप अपने संरक्षक संत अलोसियस गोंजागा की मध्यस्थता से एक नए हृदय हेतु कृपा मांगे। साहसी युवा संत अलोसियस गोंजागा, जो दूसरों की सेवा करने से भी पीछे नहीं हटे, प्लेग पीड़ितों की देखभाल के लिए अपना जीवन दे दिया। प्रभु हमारे हृदय को बदल दें। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार पूजन विधि के लिए चुने गए संत मत्ती के सुसमाचार पाठ के आधार पर सभी विश्वासियों को ईश्वर के मजबूत हाथों अपने को सुपुर्द करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, इस रविवार के सुसमाचार में यीशु ने हमें भयभीत न होने, जीवन की चुनौतियों का मजबूती के साथ मुकाबला करने और आश्वस्त होने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि जब हम असफलताओं का सामना करते हैं तो हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में दृढ़ता से रहता है, जो हमसे प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने लोरेटो की धन्य कुंवारी माता मरियम की लिटनी में तीन नए संबोधन दया की माता, आशा की माता और प्रवासियों की शरण को जोड़ा। इस नए प्रकरण को वाटिकन में दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ ने शनिवार 20 जून को माता मरियम के निष्कलंक हृदय के त्योहार के दिन सार्वजनिक किया। विश्व भर के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों को लिखे पत्र में दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट सारा और सचिव महाधर्माध्यक्ष आर्थर रोचे ने ध्यान दिलाया कि सदियों से ख्रिस्तीय प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने हेतु मध्यस्थ माता मरियम को अनेकों नामों और संबोधनों से पुकारते आ रहे हैं। वर्तमान समय में लोगों की अनिश्चितता और क्षोभ का जिक्र करते हुए कार्डिनल ने कहा कि विश्वासियों को माता मरियम के पास श्रद्धा पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ जाना चाहिए। समय की जरूरत को देखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने माता मरियम की लिटनी में माता मरियम के लिए तीन नए संबोधनों को जोड़ा। लिटनी में कलीसिया की माता के बाद दया की माता को रखा गया, दिव्य कृपा की माता के बाद आशा की माता माता को रखा गया और पापियों की शरण के बाद प्रवासियों की शरण को रखा गया है। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए महाधर्माध्यक्ष रोश ने कहा, ये आह्वान समय की वास्तविकताओं का जवाब देती हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। दुनिया भर में कई लोग जो कई तरह से पीड़ित हैं, न केवल कोविड-19 महामारी से, बल्कि गरीबी, संघर्ष और कई अन्य कारणों से पीड़ित हैं। वे माता मरियम के आश्रय में जाती हैं। उधर सम्मान सेवा निवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें अपने गंभीर रूप से बीमार भाई फादर जॉर्ज के साथ रेजनबर्ग में कुछ दिन बिताकर सोमवार 22 जून को म्यूनिक से उड़ान भरेंगे और वाटिकन वापस लौटेंगे। रेजनबर्ग क्लेमेननेक धर्म प्रांत के प्रवक्ता ने जर्मन कैथोलिक समाचार एजेंसी को इसकी पुष्टि की। पिछले गुरुवार को वाटिकन प्रेस के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने घोषणा की थी कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें अपने गंभीर रूप से बीमार भाई फादर जॉर्ज से मुलाकात करने जा रहे हैं और वे जब तक आवश्यक हो रेजनबर्ग में रहेंगे। आज आखिरी दिन वे बवेरिया में अपने भाई के घर में कुछ समय बिताएंगे। कल उन्होंने परिवार के कुछ स्थानों का दौरा किया जहां वे पिछली आधिकारिक घर की यात्रा 2006 के बाद से नहीं गए थे। उनका पहला पड़ाव जिगेन्सफोर्ड का कब्रिस्तान था। उन्होंने अपने माता पिता और बड़ी बहन की कब्र पर जल छिड़का और कुछ देर मौन रहकर प्रार्थना की। दूसरा पड़ाव रेगेन्सबर्ग के बाहरी इलाके पेंटलिंग में उनके घर में हुआ। मोनाको और फ्रीजिंग के महाधर्माध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले 1969 से 1977 तक सैद्धांतिक धर्म विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कई वर्षों तक बिताए घर में वे पौन घंटे रहे। इस घर को अब बेनेडिक्ट 16वें संस्थान गृह बनाया गया है जहां उनकी धार्मिक विरासत संरक्षित है। कल रविवार को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने बर्लिन से जर्मनी के प्रेरितिक राजदूत और महाधर्माध्यक्ष निकोला एत्रोविक से मुलाकात की, जिन्होंने संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके स्थान पर महाधर्म प्रांत का पदभार संभाला। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 20 जून को वाटिकन में उत्तरी बार्डी क्षेत्र से आए डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल और धर्म संघियों एवं नागर अधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनके साहसपूर्ण कार्यों और सेवाओं के लिए अपना आभार प्रकट किया। इटली में पहला कोविड-19 संक्रमण 21 फरवरी को लोम्बार्डी के कोडोगना शहर में सामने आया। लोम्बार्डी और बेनेतो प्रांत में कोडोगनो और 9 अन्य शहरों को बंद कर दिया गया था और अंततः पूरे देश में मार्च की शुरुआत में लॉकडाउन शुरू किया गया था। महामारी शुरू होने के बाद से इटली में कोविड-19 से अब तक 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, उनका अभिवादन उन सभी लोगों को जाता है जिन लोगों ने खुद को महामारी के अग्रिम पंक्तियों में पाया है। उनमें स्पालांची अस्पताल के शोधकर्ता भी शामिल हैं जिन्होंने वायरस का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ किया। संत पापा ने कहा, उनका विचार इतालवी समाज की ओर जाता है जिन्होंने इस परेशान महीनों के दौरान उदारता और प्रतिबद्धता के साथ स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करने का प्रयास किया है। संत पापा ने कहा, पहले से कहीं अधिक हम उन डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए अपना आभार महसूस करते हैं क्योंकि वे कुशलता और साहस के साथ मरीजों की सेवा करते हैं। उनमें से कई डॉक्टर बीमार पड़ गए और कुछ दुर्भाग्य से अपना काम करते हुए मर गए। हम उन्हें कृतज्ञता के साथ प्रार्थना में याद करते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।